Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं या कौन सा साइड चुनते हैं। जो रास्ता हम चुनते हैं वही अपनी मंजिल की ओर हमें ले जाता है। हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुने। आज हम जानेंगे कि जिंदगी के रास्तों को किस तरह से आसान बनाया जाए, किस तरह से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा जाए, उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वीके चिन्मय भाई जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो।
थैंक यू, ओम शांति।
दादा, हम बात कर रहे थे लॉज के बारे में। कुछ ऐसे लॉज हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अब कौन से ऐसे और लॉज हैं जिन्हें अभी तक हमें जाना नहीं है?
हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लॉज को देखा
जी,
और उससे समझा, और उससे हमें अपने रास्ते में कैसे आसानी मिले, और हम रास्ता कैसे एकदम पेशेंस के साथ और कैसे एकदम कूलनेस के साथ काट सके रास्ता, वो हमने देखा। अभी मेरे को ये भी जानना जरूरी है कि एक लॉ है, वो है लॉ ऑफ पोलैरिटी।
ओके,
और लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या है कि जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं।
हाँ जी,
राइट। दैट मीन्स कि अगर कुछ अच्छा एग्जिस्ट करता है तो कभी कभार कुछ बुरा भी एग्जिस्ट करता है, राइट। अगर दिन है तो रात भी है, राइट, और रात है तो दिन भी है, राइट, और दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक को आना ही पड़ता है दूसरे को आने के लिए, राइट। सेम थिंग अगर हॉट एंड कोल्ड है, राइट, फिर अच्छा या बुरा है, राइट, सच या झूठ है, राइट। तो मुझे ये समझना है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी के मुताबिक अगर मैं कुछ बैड एक्सपीरियंस करता हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ गुड एक्सपीरियंस मेरी दिशा पकड़ रहे हैं, मेरी ओर आ रहे हैं।
वाओ,
क्योंकि कोई किसी व्यक्ति का मेरे प्रति कुछ बुरा व्यवहार होता है, इसका मतलब किसी और व्यक्ति का मेरे प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार है, राइट। और अब ये मेरे ऊपर निर्भर है, जैसे आपने कहा कि मैं कौन से पहलू को देखूं और किस पर फोकस करूं, राइट। तो ये है लॉ ऑफ पोलैरिटी।
अगर मैं ये कहूं कि सक्सेसफुल होने में कोई भी चीज, जिंदगी की छोटे से छोटे सपने या बड़े से बड़ा ख्वाब, हर सक्सेसफुल व्यक्ति हमेशा हर चीज की पॉजिटिविटी को देखता है, तभी ही वो सक्सेसफुल हो पाता है। एम आई राइट?
दैट्स सो ट्रू। वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है,
ओके,
और वो हमेशा रियलिस्टिक भी होता है कि अभी वो ऐसे नहीं सोचता कि चलो मेरे ब्यूटीफुल गार्डन है तो ब्यूटीफुल गार्डन में कभी कभार वो छोटे छोटे वीड्स आ जाते हैं, जो वीड्स प्लांट्स को, जो अच्छे प्लांट्स है उसको भी हानि पहुंचाते हैं, राइट। तो वो ऐसे नहीं सोचता कि चलो मैं पॉजिटिव थिंकिंग कर लूं और मैं ऐसा सोचूं कि मेरे गार्डन में, गार्डन ऑफ माइंड में वीड्स है ही नहीं। वो प्रैक्टिकल होता है, वो कहता है वीड्स है इधर और मुझे उसमें निकालना है, और अपने गार्डन को फर्टिलाइज करना है, अच्छी चीजें डालनी है, बुरी चीजें निकालनी है, अच्छी चीजें डालनी है। तो वो प्रैक्टिकल सोचता है और ऑप्टिमिस्टिक सोचता है। ये सोचता है कि अगर ये कोई बदल सकता है तो मैं बदल सकता हूँ, किसी और को की मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है।
सो ट्रू। इसी बात से मेरे दिमाग में एक और बात आई कि अगर कोई गंदा बकेट ऑफ वाटर होता है, अगर हमें उसे अच्छे पानी उसमें डालना है तो हमें क्या करने की जरूरत है? सिर्फ उसे अच्छे पानी के टैप के नीचे रखने की जरूरत है। जो गंदा पानी है वो ऑटोमेटिकली अच्छे पानी से रिप्लेस हो जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी में अगर हमें लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो हम ये नहीं सोच सकते कि मुझे बुरा नहीं चाहिए, मुझे बुरा नहीं चाहिए। अगर वही सोचते रहेंगे तो उसी में स्टक हो जाएंगे।
True.
अगर हम उस चीज के बदले हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा हो रहा है, वो उससे रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बुरी चीजें हैं वो निकल जाएंगी। Exactly. आपका क्या कहना है इसके बारे में?
That reminds me कि हमारा मन जो है वो चित्र की भाषा जानता है।
करेक्ट।
वो हम जो बोल रहे हैं वो भाषा नहीं जानता, और शायद से उसको डीकोड करने में बहुत टाइम लगता है। पर अगर मैं उसको पिक्चर की भाषा दिखाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए इंस्टेड ऑफ मुझे क्या नहीं चाहिए, राइट right? क्योंकि मन जो है वो, जैसे आपने कहा कि वो पॉजिटिव चीजें ले लेगा और उसको चित्रकरण कर देगा. तो दैट मींस कि अगर मुझे किसी चीज पर फोकस करना है तो मैं क्या नहीं चाहिए पे फोकस करने की बजाय मैं क्या चाहिए वो फोकस करूं.
True.
क्योंकि मन को वैसे नहीं का मतलब भी नहीं पता, राइट right? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि हमको जो भी हो जाए लाख कोशिश हम कर लें पर सफेद हाथी के बारे में हमें नहीं सोचना है तो हम क्या सोचेंगे, सफेद हाथी, राइट right? और yeah. वो पिक्चर मेरे माइंड में आ गया, राइट right? मुझे ताजमहल के बारे में नहीं सोचना है. भल अगर मैं ताजमहल शायद गया भी नहीं हूं फिर भी मैं ताजमहल माइंड में लेके आऊंगा. क्यों? क्योंकि मन को नहीं का मतलब नहीं पता, उसको सिर्फ चित्र की भाषा जानता है. तो अगर मैं उस पर फोकस करता हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे बैड रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, मुझे निष्फलता नहीं चाहिए, तो मैं मेरे मन में कौन सा पिक्चर देता हूँ, बैड रिलेशनशिप्स, निष्फलता, राइट. इंस्टेड ऑफ दैट उसको मैं रिप्लेस कर दूं और उसको मैं ये पिक्चर दिखाऊं कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए. अगर मेरा फोकस चेंज हो जाए, है सेम ही चीज पर मोर क्लैरिटी है और मन को भी क्लैरिटी से पिक्चर मिला है और वो पिक्चर की ओर मन फिर आगे बढ़ सकता है.
ब्रदर, जब हम बात करते हैं पीस की, पीस का अमन और शांति की, उसका दूसरा ऑपोजिट है अशांति. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, वैसे तो हम सभी पीस चाहते हैं, हम सब सुकून चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शोर में मजा आता है. जैसे आजकल की यंगस्टर्स की मैं अगर बात करूं, बहुत शोर शराबे वाले जगह पे, बहुत भीड़ हो जहाँ पर, जहाँ पे एक साथ लोग आकर किसी चीज़ के पीछे इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ही एक तरफ तो बहुत उस समय बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं तो बहुत अकेले होते हैं. उनको अपने पेरेंट्स के बीच में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि मुझे खालीपन सा फील हो रहा है, जबकि वही दो लोग जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने ही तो आपको ये ज़िंदगी दी है. तो ये आजकल के यंगस्टर्स में थोड़ा सा ज्यादा नजर आने लगा है कि भीड़ में रहना पसंद है और अकेले और भी ज्यादा है. वो ये एक्सट्रीम पोलैरिटी जो इनकी जिंदगी में आ रहा है, ये क्यों आ रहा है?
द मेन रीजन इज कि उनका फोकस जो है वो खुद की, सिर्फ खुद की एंजॉयमेंट पर है.
okay.
और इसीलिए वो हमेशा उस क्रेविंग में रहते हैं कि मुझे एंजॉयमेंट कहां से मिले, राइट तो वो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट्स में फिर वो ऑफकोर्स नेचुरली हर कोई जाता है क्योंकि उनका फोकस वो है. और फोकस शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट्स में है तो मैं शॉर्ट टर्म की चीजें ही ढूंढूंगा, राइट पार्टी में जाऊंगा, ढेर सारा पैसा खर्च करूंगा और फिर से दूसरे दिन मैं वही प्लान करूंगा कि अभी नेक्स्ट क्या करूं पार्टी, राइट
right? जी.
और वो ही साइकिल में मैं चला जाऊंगा, राइट तो उस लाइफस्टाइल को वो कितनी देर मेंटेन कर सकते हैं, राइट 1 year, 2 years, 5 years. फिर आत्मा कोई जो ओरिजिनल नेचर है, वो आत्मा का एक अंदर से आवाज उनको आती है कि अभी बहुत हो गया, राइट आई नीड समथिंग जो कि रियल है, जो कि अंदर से आता है, राइट और जब वो उनकी पुकार आती है, फिर मैंने देखा कि कई लोग जो कि पहले बहुत पार्टी करते थे, पहले बहुत ही मतलब बाहर जाके मजा लेने की कोशिश करते थे, वो अभी इस स्पिरिचुअल फिलॉसफी में या फिर कहीं और जाके सिर्फ शांति से बैठने में भी आनंद लेते हैं. तो उनको एक ये रियलाइजेशन हो जाता है कि यही लाइफ नहीं है, लाइफ इज समथिंग जो अंदर से आता है.
ब्रदर, जब हम बात करते हैं पोलैरिटी की, पोलैरिटी में दो चीजें होती हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम क्वांटिटी में चले जाते हैं कि मुझे ये सब चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे गाड़ी, मुझे घर बंगला चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे बेसिकली एक्सट्रीम्स में जाते हैं कि मुझे ये लिस्ट चाहिए, लेकिन क्वालिटी उस चीज पर नजरअंदाज कर देते हैं. क्योंकि ये सभी जो वस्तुएं जिसके लिए हम भाग रहे हैं, ये सभी तो क्षणिक हैं, अर्थात ये सभी टेम्प्ररी हैं. वो शायद मैं हासिल भी कर लूं पर वो गारंटी नहीं है कि वो मेरे साथ सदा रहेगी. लेकिन इन सभी के बीच में एक चीज की सिमिलैरिटी है, वो है खुशी. जब मैं खुश होती हूँ तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, जब मैं खुश नहीं हूँ तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो लाइफ में क्वालिटी या क्वांटिटी क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
मेरे ख्याल से बैलेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ओके।
क्योंकि दोनों पहलू को मुझे एक्सेप्ट करना है, राइट? तो एक राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी, राइट? दोनों के पीछे मैं इतना ना घुल जाऊं किसी एक के पीछे कि मैं दूसरे को भूल जाऊं, राइट? मैंने कई लोगों को देखा है जो सिर्फ क्वांटिटी में, जैसे आपने कहा कि क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, इन द सेंस कि वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते हैं, दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर, राइट? और वो कभी उनको संतुष्टता नहीं मिलती। पर ऑन द सेकंड हैंड मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो खूब स्पिरिचुअल होते हैं, वो हर रोज 8 to 10 hours वो रिलीजियस एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में निकालते हैं, पर अगर उनका फाइनेंसेस को हम देखें तो वो इतने लेवल पर नहीं है कि वो खुद को भी सस्टेन कर पाए, राइट? तो दोनों एक चीज से मतलब फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी लाता है, और फीलिंग ऑफ लैक लाता है, तो मेरे ख्याल से बैलेंस करना उसको, कि मेरे जीवन में क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, और दोनों चीज मेरे अंदर से आए, राइट? ताकि मैं किसी चीज पर डिपेंडेंट ना रहूं, कि अगर मेरी गाड़ी चल रही है तो ही मैं खुश हूं, अगर गाड़ी ठीक नहीं है और मेरी मर्सिडीज ठीक नहीं है फॉर एग्जांपल, तो मुझे ट्रेन में सफर करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, राइट? और अगर मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, राइट, तो मैं उसको लेने के लिए भी झिझकना नहीं चाहिए मुझे, राइट? मुझे वो भी एक्सेप्ट करना चाहिए।
सो ट्रू। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो परफेक्शन को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, हर चीज सही ढंग से हो तो ही वो मेरी जिंदगी में रहेगा, वरना उसके लिए मेरी कोई जगह नहीं है। कई बार ऐसे लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो हम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, कि जरूरी नहीं है कि कुछ अगर थोड़ी सी खामी भी हो तो वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को भरना और फिर उसे सक्सेसफुल बनाने का कार्य भी हमारा ही होता है। लेकिन जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं परफेक्शन से, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है कि जिंदगी को इतना परफेक्ट भी बनाना सही है या थोड़ा सा इम्परफेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है?
मैं कहूँगा कि जो परफेक्शनिस्ट लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मतलब ऐसा ही समाज में वो एडवर्टाइज किया जाता है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, आपका जीवन परफेक्ट होना चाहिए, आपका बॉडी परफेक्ट होना चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, आपके फाइनेंसेस परफेक्ट होने चाहिए, जो कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? एक प्रैक्टिकलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो एक्सीलेंस के पीछे जाएं, नॉट परफेक्शन, राइट? एक्सीलेंस मतलब कि कल जैसे मैंने किया परफॉर्म, उससे मैं बेहतर बनूं और एक्सीलेंस की ओर जाऊं, ताकि मैं जो कर रहा हूं वो मैं अपना बेस्ट दूं, 100% दूं, और लोगों को भी उसका 100% वो रिसीव होए, वो मैं उनको फीलिंग दूं, राइट? तो अगर मैं एक्सीलेंस के को लूंगा अपने ध्यान में, तो मैं मेरे को ये जो परफेक्शन का जो मेरा बिहेवियर है वो एक्सीलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही ऑटोमेटिकली मेरे को फिर इजीनेस लाएगा, कि ओके, मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ कल से बेहतर बनना है, थोड़ा सा बेहतर, राइट? नॉट परफेक्ट बट थोड़ा सा बेहतर, क्योंकि परफेक्ट लोग वहीं एग्जिस्ट करते हैं जहां पे लोग सांस नहीं लेते, एंड दैट इज द ग्रेवयार्ड, राइट?
ओह रियली?
क्योंकि बाकी सभी तो अभी यू नो
जर्नी में
है, एग्जैक्टली, तो सेम थिंग हमें ये याद रखनी चाहिए, राइट? कि ओनली पीपल हु आर परफेक्ट, या तो वो सांस नहीं ले रहे हैं, और या फिर वो जो जी रहे हैं वो एक्सीलेंस की ओर जा रहे हैं।
सो ट्रू। आज मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों की जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी जिंदगी में उन्होंने शायद पूरी जिंदगी बहुत काम किया, बहुत भागे दौड़े, अपने बच्चों के लिए एक लाइफस्टाइल बनाया, एक सक्सेसफुल शायद बिजनेसमैन रह चुके हैं, शायद बैंक में काम कर चुके हैं, या उनका खुद का बिजनेस रह चुका है, कुछ भी कार्य करके उन्होंने पूरी जिंदगी बिता दी, अब वो रिटायरमेंट पे है। ये दो बहुत ही अलग जिंदगियां होती हैं। पोलैरिटी की बात करें अगर हम, एक जिंदगी है जिसमें आप दिन रात काम कर रहे हैं और एक जिंदगी है जिसमें आप खाली हैं। उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है, क्योंकि दे आर स्टक, उन्होंने जो पूरी जिंदगी किया अब वो नहीं कर सकते, अब उन्हें एक नई जिंदगी जीनी है, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है?
उनको अपने जीवन में न्यूनेस लानी चाहिए।
जी,
नॉट नेसेसरी कि वो मटेरियलिस्टिक गोल्स ही सेट करे। हो सकता है वो अपने लिए एक हेल्थ का कोई एक स्तर लेके आए, कुछ एक्सेलेंस इन हेल्थ लेके आए, ताकि उनके जो जो लास्ट ईयर्स है जो वो खुशी से बिता सके और हैप्पी बिता सके, राइट? और उनके किसी उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, राइट? सेकेंड थिंग इज वो दूसरों पर फोकस कर सकते हैं और उनके बेटरमेंट के ऊपर भी वो ध्यान दे सकते हैं।
बिल्कुल,
क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया 60 years, 62 years, वो एक्सपीरियंस कितना महत्वपूर्ण होता है। और अगर शायद वो सिर्फ दिन के एक घंटे किसी जरूरतमंद को जिनको वो एक्सपीरियंसेस की जरूरत है अगर सिर्फ शेयर करें, तो भी एक टाइप का वो एक ग्रोथ हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ, राइट? जिससे उनको खुशी मिलती है। तो मेरे अपने मम्मी का मैं एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने अभी 2 महीने पहले ये गोल सेट किया कि मुझे हाफ मैराथन मेरे को दौड़ना है, राइट? तो उन्होंने जिम ज्वाइन किया, तो धीमे धीमे उनका जो प्रोग्रेस होने लगा तो उनसे उनको खुशी मिलती गई, राइट? तो अभी जो प्रोग्रेस हो रहा है वो दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि देखो मैंने ये जिम ज्वाइन किया तो मुझे ये फायदा हुआ, मेरा नी पेन था वो चला गया, और धीरे 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 और भी ज्यादा फायदे होने लगे, राइट? तो वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, वो ग्रो भी कर रहे हैं और इंस्पायर भी कर रहे हैं एक तरह से, isn't it?
हमारे इस सीरियल का लक्ष्य यही है कि किस तरह से जिंदगी को आसान बनाया जाए। सिंप्लीफाई करना और कॉम्प्लिकेट करना, ये दो भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में मजा आता है। वो कहते हैं एडवेंचर नहीं है तो जिंदगी नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो जिंदगी नहीं है। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूं कि जिंदगी है क्या, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत सिंपल है, खुश रहो और खुश दूसरों को बनाओ। कुछ लोग कहते हैं कि एडवेंचर ही जिंदगी है, प्रॉब्लम्स ही जिंदगी है, अगर प्रॉब्लम्स नहीं हो तो जिंदगी नहीं है। ये दो भी एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्या करें?
अगेन बैलेंस, राइट?
ओके,
एडवेंचर ऑफ कोर्स जरूरी है, चैलेंजेस जरूरी है, और शायद से अगर चैलेंजेस ना हो हमारे जीवन में तो हम उतना ग्रो भी नहीं कर पाए और इतना इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं कर पाए, राइट? पर एट द सेम टाइम उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना, उसका तरीका हमें सिंपल होना चाहिए, राइट? कई कबार हम राय को पहाड़ बना देते हैं, राइट? छोटी सी चैलेंज होती है पर उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं, राइट? तो वो करने की बजाय पहाड़ को छोटा बना दो, राय बना दो, तो उसको सॉल्व करने में हमें आसान से तरीके मिल जाते हैं, राइट? क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है, कभी कभार उसको अगर कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं मिलते तो ऐसा लगता है कि ये रियलिस्टिक नहीं है। कई कबार मैं जब यूथ्स के साथ शेयर करता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप सिर्फ अपने क्वेश्चंस बदल दो तो आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी,
okay.
तो वो बिलीव नहीं करते कि रियली क्या ये सही है, इतना सिंपल हो सकता है कि सिर्फ मैं अपने क्वेश्चंस बदल दूं। पर फिर मैं जब उनको एग्जांपल देता हूँ कि आप लिखो कि आप अभी अपने आप को क्या क्वेश्चंस पूछते हो, कि वाई मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, तो वो जो सारे नेगेटिव क्वेश्चंस का लिस्ट बनाते हैं और फिर उनके ऑपोजिट क्वेश्चंस मैं उनको बनाने को कहता हूँ, जब वो लिस्ट बनाते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि ये तो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है।
अभी तक जितनी बातें हमने पोलैरिटी के बारे में की, मैं उसको सार में अगर समझने की कोशिश करूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं जिसमें से हमें तय करना है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि वो डिसीजन हम खुद पर नहीं किसी और पर थोपते हैं कि, और ये होता है जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनकी जो सोच है वो हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। वो कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, स्पाउस हो सकता है, बच्चे, कोई भी हो सकता है। ऐसे में कई बार हम अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें मार कर, क्योंकि हम दूसरों से खुशी देना चाहते हैं इसीलिए उनकी राय को आगे रखकर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में कई बार हम कर तो लेते हैं जो हम कर रहे हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हमने दूसरे के लिए अपने आप को बदला। ये किस हद तक सही है?
सबसे पहले तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि उनको जो उनको हैप्पीनेस मिले उसके लिए मैं तो अपनी हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, इन द सेंस कि मेरा जो कम्युनिकेशन है उनके साथ वो तो क्लियर है कि नहीं है। दैट मींस कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी पापा मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और अगर मेरी खुशी डॉक्टर बनने में नहीं है और फिर भी मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, तो क्या मैं वो सही रास्ते पर जा रहा हूँ? क्या मैं ना खुश होकर अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो क्या मैं जो लोग मेरे पास आएंगे एज ए पेशेंट क्या मैं उनको जस्टिस दे पाऊंगा? क्या मैं उनको खुशी दे पाऊंगा? तो अगर मैं किसी और की सिर्फ खुशी के लिए, इन द सेंस कि उनको खुश रखना भी जरूरी है पर एट द सेम टाइम उनको कम्युनिकेट करना कि मेरी खुशी भी कहाँ है वो बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही हमारी सोसाइटी में गैप है, कम्युनिकेशन गैप, कि लोग समझा नहीं पा रहे एक दूसरों को कि मुझे आखिर में चाहिए क्या और क्यों चाहिए, राइट? और उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी कमी के कारण ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाती है अगेन कि आपने मुझे कहा इसलिए मैंने ये किया, अभी देखो मैं नाखुश हूँ।
दिस इज सो ट्रू ब्रदर। दो चीजें हैं, एक है नीड्स और दूसरे है विशेस। कई बार जिंदगी की जरूरतें हमें अपने विशेस पूरे करने नहीं देती क्योंकि शायद एक परफेक्ट जॉब जिसमें मुझे जिसके लिए मैंने पढ़ाई की पूरी जिंदगी और मैंने वो जॉब हासिल की, लेकिन मेरा पैशन शायद सिंगिंग में है, शायद डांसिंग में है, जिसमें मुझे शायद उतना फेम ना मिल पाए, उतना पैसा ना मिल पाए जो मेरे घर को चला सके। तो नीड्स और विशेस ये भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों के बीच में बैलेंस कैसे क्रिएट करें, क्योंकि आप खुद इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। आपने एज ए पायलट कार्य किया, अब आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर कार्य कर रहे हैं, यू आर इनटू म्यूजिक एज वेल। तो मल्टीटास्किंग किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर ला सके?
तो सबसे पहले तो जिनको ये पैशन है म्यूजिक का, डांसिंग का, या फिर कोई किसी को आर्टिस्ट बनना है, राइट, क्रिएटिव फील्ड का, तो उनको ये मानना चाहिए, जानना चाहिए कि प्लानिंग इज द मेन की इम्पोर्टेंस होता है। कई दफा मैंने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट्स, एक्टर्स, वो अपने फाइनेंसेस को प्लान नहीं करते, राइट? और जब वो प्लान नहीं करते और सिर्फ एक ही फील्ड में पूरा जीवन डेडिकेट कर देते हैं और एक ही कोशिश में, और फिर वो कुछ सालों बाद रियलाइज करते हैं कि मैंने तो अपने जीवन को प्लान ही नहीं किया और अभी मेरे पास कुछ नहीं बचा, राइट? जो कि एक एक जैसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ सॉर्ट ऑफ, राइट, कि मैंने कुछ सोचे समझे बगैर बिना प्लान किए मैंने कर दिया। तो सबसे पहले तो मुझे प्लान करना चाहिए, जो मैंने किया कि अगेन मेरे को पायलट के प्रोफेशन से मुझे मोटिवेशनल स्पीकर भी बनना है, तो क्या मेरे पास वो फाइनेंसेस है, मेरे पास बैकअप है? जब तक मेरे पास वो बैकअप नहीं था तब तक मैंने वो काम किया, राइट? मैंने कभी कभार ओवर टाइम भी काम किया, कभी कभार बहुत ज्यादा आवर्स भी काम किया, क्योंकि मेरे को वो बैकअप बिल्ड करना था, राइट? जब मेरे पास इनफ बैकअप आ गया फिर मैंने दूसरी चीज को परस्यू करना सोचा। जब दूसरी चीज से मेरा बैकअप का जो प्लान था वो अगेन स्ट्रांग हो गया, तब मैंने तीसरी चीज को करना शुरू किया। तो वही मैं उनसे कहना चाहूंगा जो भी सेकेंडरी पैशन उनका परस्यू करना चाहते हैं कि आप ठीक से उसको प्लान करो, राइट? फॉर मी मैंने 6 महीने का प्लान किया कि अगर 6 महीने भी मेरे पास अगर जॉब नहीं है तो क्या मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को और मेरे परिवार की बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाऊंगा? तो मैंने ये सोचा, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि क्या चाहिए मेरे को। जब वो कैलकुलेट किया वो आ गया मेरे पास, फिर मैंने दूसरा शुरू किया।
आप कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी रेस नहीं है, जिंदगी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जर्नी है।
एब्सोल्युटली,
क्योंकि आपने कहा कि एक एक स्टेप मैंने कम्प्लीटली सिक्योर किया अपने आप को, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। जैसे ही मैंने इस चीज को सिक्योर किया फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया। इससे क्या होता है, इससे आप अंदर से स्ट्रांग फील करते हैं।
एग्जैक्टली,
और एक अंधाधुन अपनी जिंदगी में सिर्फ क्रिएटिविटी को लेकर के आगे बढ़ते रहना इज नॉट प्रैक्टिकल।
ट्रू,
पहले अपने आप को सिक्योर बनाएं, बैकअप प्लान हमेशा रखें जिंदगी में, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप एक्सट्रीम में चले जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आई थिंक ये पोलैरिटी जो आपने नया इंट्रोड्यूस किया है वर्ड हमारी जिंदगी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हम जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे कि कोई भी चीज़ का बैलेंस क्यों नहीं हो पाता हमारी ज़िंदगी में, हम हर किसी चीज़ के अति में क्यों चले जाते हैं, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिससे शायद हम सभी जूझ रहे थे। उसका सवाल का जवाब आज आपने हमें दे दिया कि पोलैरिटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी को अपनी ज़िंदगी में लाइए और ज़िंदगी को आसान बनाइए। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।
यू आर वेलकम।
ओम शांति।
ओम शांति।
दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने एक नई बात को जाना। हमने जाना कि ज़िंदगी सिर्फ सीखने का नाम है। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और वही हमारी जर्नी को तय करता है। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आपने जीना बंद कर दिया। हमने जाना कि पोलैरिटी, लॉ ऑफ पोलैरिटी, अर्थात हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, चाहे अगर बुरा एग्जिस्ट करता है तो अच्छा भी एग्जिस्ट करता है, बस हमें उस अच्छाई को देखने की देरी है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।